ओम शांति। भाग्यवान हैं वो सभी ब्रह्मावत्स जिन्हें डायरेक्ट भगवान के महावाक्य सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। युगों से हम सभी ब्रह्मनाद अनहदनाद सुनने के लिए लालायित रहते थे और इसके लिए अनेक त्याग तपस्या और साधनाएं लोगों ने की हैं, परंतु अब घंटों भगवान की वाणी सुनने का भाग्य जिन आत्माओं को मिलता है, न केवल वो भाग्यवान हैं, लेकिन बहुत महान भी हैं। सभी लोग इस संसार में सत्य की खोज में निरंतर प्रयासरत रहे हैं। किसी ने सत्य को जानने के लिए शास्त्रों का अध्ययन किया, किसी ने साधनाएं की, लेकिन विद्या का क्षेत्र इतना गहन और इतना विस्तार है कि संपूर्ण ज्ञान किसी भी मनुष्य को प्राप्त होना प्राय असंभव सा ही प्रतीत होता रहा। देखिए, मनुष्य सत्य की ओर दौड़ना चाहता था, और सत्य तो ये है कि हर मनुष्य जिस भी तरह की विद्या का अध्ययन करता है, किसी विशेष शास्त्र को पढ़ता है, तो वो यही सोचता है मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरा ज्ञान ही संपूर्ण सत्य ज्ञान है। इस संसार में मनुष्य गुरु भी जो ज्ञान देते हैं वो भी यही कहते हैं और समझते हैं कि हम जो तुम्हें कह रहे हैं वही संपूर्ण सत्य है, और ये सत्य की खोज बराबर चलती रही। लेकिन अनेक लोगों के द्वारा ज्ञान दिया जाने के बाद भी मनुष्य के मन का अंधकार बढ़ता ही रहा, और अंधकार की पहचान है मनोविकार बढ़ते रहे। जहाँ अंधकार होगा वहाँ पांचों भूत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मनुष्य के मन में प्रवेश करते ही रहेंगे। तो ज्ञान बढ़ता रहा, जिसे लोग ज्ञान कहते हैं, और अंधकार बढ़ता रहा। भगवान को सभी कहते रहे, हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। संपूर्ण अध्ययन के बाद भी यही आवाज सभी के मन से निकलती रही। सिद्ध है कि मनुष्य स्वयं संपूर्ण सत्य तक नहीं पहुंच पाया। यह भी मानना पड़ेगा कि तर्कों के द्वारा संपूर्ण सत्य को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि तर्क जिस बुद्धि से किए जाते हैं उस बुद्धि की एक सीमा होती है। जब वो सीमा समाप्त हो जाती है तो तर्क भी असफल हो जाते हैं और मनुष्य उसको ही अंतिम सत्य मान लेता है, परंतु ऐसा नहीं है। प्राचीन काल से ही सत्य के बारे में विद्वानों के मध्य, सन्यासियों के मध्य शास्त्रार्थ होते रहे, और जो जीत गया उसके मत को ही सबने सत्य मान लिया, परंतु सत्य फिर भी कोसों दूर रहा। बाद में चलकर किसी अन्य विद्वान आचार्य ने उसके मत को खंडित कर दिया। तो सत्य कहाँ है? जो परम सत्य है, जिसको ज्ञान का सागर कहते हैं, जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज है, जिसको निराकार परमात्मा कहते हैं, वही वास्तव में त्रिकालदर्शी है। उसके पास ही संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए उसको गॉड इज ट्रुथ, भगवान ही परम सत्य है, इन शब्दों से महिमा उसकी की जाती है। तो ये सुंदर समय सृष्टि पर है जबकि भगवान स्वयं अपना सत्य ज्ञान दे रहे हैं। उसने संपूर्ण ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर को अपना माध्यम बनाकर दिया, और हम सब ब्रह्मावत्स उस ज्ञान का अध्ययन करते हैं, उस ज्ञान को भली भांति जानते हैं। भगवान के उस ज्ञान को हम ईश्वरीय महावाक्य भी कहते हैं और ज्ञान मुरली भी कहते हैं। तो इस प्रस्तुत चर्चा में मैं भगवान के महावाक्यों को मुरली नाम से ही संबोधित करूंगा। प्रतिदिन हमारे सभी सेवा केंद्रों पर ये मुरली सुनाई जाती है, अर्थात भगवान ने ब्रह्मा मुख के द्वारा जो महावाक्य उच्चारित किए थे वो सुनाए जाते हैं। अनेक ब्रह्मावत्स सवेरे सवेरे उठकर इन महावाक्यों का श्रवण करने के लिए सेवा केंद्रों पर पहुंचते हैं। कहीं कहीं ये महावाक्य सवेरे 5:30 बजे भी सुनाए जाते हैं, तो कहीं उससे भी पूर्व 5 बजे, कहीं 6 बजे, 6:30 और कहीं 7 बजे भी। सारे दिन भी इसकी क्लासेज लगती रहती हैं और शाम को भी विशेष क्लास का आयोजन किया जाता है, जहां सभी ब्रह्मावत्स आकर ज्ञान का श्रवण करते हैं। और सबका ये अनुभव है कि इस ज्ञान को पाकर उनकी सत्य की खोज पूर्ण हो गई। इन मुरलियों को सुनकर उनके सभी प्रश्न समाप्त हो गए, जो गुत्थियां उनके मन में थी, जो उलझने उनके पास थी, वो सब सुलझ गई। उन्हें आत्मसंतोष हो गया, उनका चित्त प्रकाशित होने लगा और उसका प्रमाण रहा कि उनके मनोविकार छूटने लगे। तो इन ईश्वरीय महावाक्यों को हम प्रतिदिन सुनते हैं, इनका परम महत्व है। जो ब्रह्मावत्स इन महावाक्यों को नहीं सुनते, केवल पढ़ते हैं, उनको मन में इसका एक अभाव सा महसूस होता है। परंतु जब हम ईश्वरीय महावाक्यों को सुनते हैं तो सबसे बड़ी अनुभूति होती है, हमारा मन अतिंद्रिय सुखों में भरपूर हो जाता है। दूसरी बड़ी अनुभूति होती है कि रोज सवेरे हमें सुंदर विचार मिल जाते हैं। रोज अगर कोई टेंशन पिछले दिन में रही है वो समाप्त हो जाती है। अगर जीवन में कोई समस्या चल रही है उसका समाधान इन मुरलियों से मिल जाता है। और बहुत बड़ी चीज तो ये होती है कि अगर जन्म जन्म के कुछ भी प्रश्न किसी के मन में हैं, तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देती है रोज की मुरली। तो हम इस मुरली को संपूर्ण महत्व दें। कोई कोई ये भी सोच लेते हैं कि चलो मुरली तो कागज पर छपकर हमें मिल ही जाती है, मुरली में तो बाबा वही वही बातें रोज हमें कहते ही रहते हैं, तो मुरली पढ़ लेंगे कोई बात नहीं। ठीक है, मुरली पढ़ने से भी वही ज्ञान तो मिल जाता है, परंतु कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। और उनमें से है कि जो मुरली सवेरे नहीं सुनते वो निश्चित रूप से देर से उठेंगे, और जिनको मुरली सुनने जाना है उनको सवेरे उठकर ज्ञान अमृत पीने जाने के लिए मन में बहुत चुस्ती रहेगी, वो आलस का शिकार भी नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा फायदा इस मुरली से यही होगा कि सवेरे का हमारा समय बहुत सुंदर बीतेगा। और सवेरे के इस काल को आदि काल कहते हैं। ये समय यदि सुंदर बीतता है तो पूरा दिन सुंदर बीतता है। इस समय यदि हम स्वयं को ईश्वरीय महावाक्य सुनकर खुशियों में भर लेते हैं तो सारा दिन हमारा खुशी में बीतता है। ये बाबा की मुरलियां हम सबके लिए, पूरे जीवन के लिए, मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए, संपूर्ण बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए, अपने संपूर्ण विकर्मों को विनाश करने के लिए, इन मनोविकारों को त्यागने के लिए और सर्वगुण संपन्न जीवन बनाने के लिए श्रीमत हैं। कदम कदम पर हमें कैसे चलना है, हम ब्रह्मावत्स बन गए, हम भगवान के बच्चे बन गए, हम उसके परिवार हो गए, हमें बहुत रॉयल होना चाहिए, हमारे अंदर बहुत सद्गुण होने चाहिए, ताकि हमारा जीवन, हमारा चेहरा, हमारे सुंदर जीवन की अमिट छाप दूसरों पर छोड़ता चले। तो कदम कदम पर हमें क्या करना है, उसकी एक सुंदर और सरल श्रीमत ईश्वरीय परामर्शों से कहेंगे, वो हमें इन मुरलियों से मिलती है। इसलिए ये मुरली हमारे लिए बहुत ही महत्व की है। सच पूछें, सवेरे अगर हम ज्ञान अमृत से अपने बुद्धि को, अपने चित्त को भरपूर कर दें, तो हमारा जीवन अमृतत्व से भर जाता है। सवेरे सवेरे खुशी के साथ यदि हम अपने घर लौटते हैं तो सारा दिन हमारे कार्य सरल और सफल हो जाते हैं। तो आओ हम सभी मुरली का सुंदर रसपान करें और एक संकल्प ले लें कि ये मुरली हमारे जीवन में मधुर रस घोलती है। ये मुरली हमारे मन की सभी तनाव को समाप्त करती है। ये मुरली जीवन दायिनी है, हमें रोज जीवन देती है। माया से अगर कोई मूर्छित हो जाता है, समस्याओं में अगर कोई उदास होता है, जीवन की असफलता और हार से यदि कोई निराश होता है, तो ये मुरली उसे नया जीवन देती है। ये मुरली उसके लिए संजीवनी बूटी का काम करती है। इसलिए बाबा ने इस मुरली को सचमुच संजीवनी बूटी कहा है, जो माया से मूर्छित मनुष्यों को सुरजीत करती है, उन्हें जीवन दान देती है। तो मुरली के महत्व को समझते हुए हमें इस पर बहुत ध्यान देना है। एक महावाक्य और आप सबको याद दिला दूं। हम सभी ये कहते हैं, मानते हैं कि हमारा शिव बाबा से बहुत प्यार है। ये सत्य है कि हर आत्मा जो बाबा के बच्चे बने हैं, उनको बाबा से बहुत ही प्यार रहता है। वो बाबा की आज्ञाओं पर चलना अपना स्वधर्म मानते हैं। सब कुछ बलिदान करके भी वो आज्ञाओं पर चलने को अपना प्रथम कर्तव्य मानते हैं। तो भगवान से हमारा प्यार है, तो उसकी पहचान है कि उसकी मुरली से भी हमारा प्यार होना ही चाहिए। अगर मुरली से प्यार है, तो हम उसके लिए बहुत मन में इंटरेस्ट रखेंगे, बल्कि सुनने के लिए हम सेवा केंद्रों पर अवश्य जाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि मुरली तो हम घर में पढ़ लेंगे, आजकल बहुत सारे साधन हैं, तो प्यार तो मुरली से है, लेकिन एक विशेष सुख से हम वंचित रह जाएंगे। ये हमें ध्यान देना है कि ये बहुत बड़ा सुख है हमारे जीवन का, इसके महत्व को हम अच्छी तरह स्वीकार कर लें। मुरली से प्यार, ये हमारा प्यार सीधा शिव बाबा की ओर चला जाता है, और वो रोज उस समय हमें देखता भी है कि कौन कौन तैयार होकर बहुत प्यार से गॉडली स्टूडेंट बनकर मुरली सुनने के लिए जा रहे हैं। और हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि जब भगवान ऊपर से देखेगा कि मेरे ये अमूल्य रतन मुरली से कितना प्यार करते हैं, तो उसका भी प्यार उन आत्माओं की ओर खींचा चलाएगा। वो विशेष बल प्रदान करेगा, वो उन आत्माओं को अपने वरदान देगा, शक्तियां देगा, और उनके जीवन की यात्रा सरल हो जाएगी। तो आओ हम सभी रोज अपने जीवन की सुलभ यात्रा को ईश्वरीय महावाक्यों से प्रारंभ करें। महावाक्य तो हैं, और कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि बाबा तो रोज रोज वही बातें कहते हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। जो ज्ञान का सागर है, जो त्रिकालदर्शी है, जिसके पास अनंत ज्ञान है, भला वो रोज रोज वही बात कैसे कहेगा। जो ऐसा कहते हैं, हम ऐसा जानते हैं और ऐसा देखते हैं कि वास्तव में वो मूल्यों को ठीक से जानते नहीं हैं। वो मुरलियों का ठीक से अध्ययन नहीं करते, उन्होंने मुरलियों के रहस्य को ठीक से समझा नहीं है, या वो मुरली के अर्थ को अनर्थ करने वाले हैं। अगर बाबा ये भी कह रहा है तुम आत्माएं हो, आत्माभिमानी हो जाओ, इस देह से न्यारे हो जाओ, तो उसके कहने के तरीके अलग अलग होंगे। और वो इस तरह से हमें कहता है ताकि हम देह से न्यारे हो जाएं। देखिए, लक्ष्य हमारा ये है कि हम आत्माभिमानी बन जाएं, लक्ष्य हमारा ये है कि हम योगयुक्त हो जाएं, सर्व गुणों से संपन्न हो जाएं, सभी मनोविकारों से मुक्त हो जाएं। ये चार बड़े लक्ष्य हमारे पास हैं, जिसके बाद आत्मा संपूर्ण पावन कर्मातीत हो जाती है और उसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार मिल जाता है। लेकिन क्या इन चीजों को संपूर्ण रूप से जीवन में अपनाना इतना सरल काम है? अगर रोज रोज की हमें टीचिंग न दी जाए, तो क्या हम विकारों पर विजयी हो सकते हैं? एक बार किसी ने सुन लिया क्रोध को जीत लो, क्या वो क्रोध मुक्त हो सकता है? जब तक क्रोध को जीतने की अनेक युक्तियां बाबा अपनी मुरलियों में न सुनाए, जब तक क्रोध पर बार बार प्रहार न किया जाए, तब तक क्या कोई क्रोध से मुक्त हो सकता है? तो मुरली वास्तव में वही नहीं है। मुरलियों में अनेक रहस्य समाये हुए हैं। उन रहस्यों को वही समझ सकते हैं जो रेगुलर रूप से मुरली सुनते हैं अथवा उसका अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं, हम रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन मुरली में कई रहस्य ऐसे आते हैं जो हमें लगता है कि ये रहस्य तो हमने प्रथम बार सुना है। बिल्कुल सभी के मुख से ये निकलता है कि ये बात तो कभी सुनी नहीं थी, जबकि हमने वो बातें सुनी अवश्य होगी। तो देखिए, ये सत्य है कि बुद्धि इन महावाक्यों को ग्रहण करती है और मनुष्य के पास विस्मृति का भी एक संस्कार है, वो बहुत कुछ भूलता जाता है। और ये भी सत्य है कि एक बात को सुनकर एक ही बार में धारण भी नहीं किया जाता है। मनुष्य की बुद्धि में, मन में अनेक बातें रहती हैं। कुछ अच्छी बातें भी डिलीट हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, और कुछ बेकार की बातें भी बुद्धि में बसी रहती हैं। इसलिए ये कहना कि मुरली रोज रोज वही तो सुनाई जाती है, कभी कभी सुन लिया करेंगे, ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे रोज रोज वही भोजन तो खाते हैं, कभी कभी खा लिया करेंगे। तो ऐसा नहीं है, मुरली जीवन को रसों से भर देती है। तो आओ हम मुरली जाने से पहले कुछ तैयारी करें। क्या तैयारी करेंगे और मुरली हमें कैसे सुननी चाहिए और सारा दिन मुरली का उपयोग कैसे करना चाहिए, इस पर कुछ चर्चा हम करेंगे। मुरली सुनने से पहले अगर हमारा अमृत वेले का योग बहुत सुंदर हो जाए तो हमारी बुद्धि मुरली के वरदानों को धारण करने के लिए तैयार रहती है। मुरली से पहले यदि आधा घंटा हम योग कर लें, कम से कम 15 मिनट अवश्य ही, तो मुरली की मुख्य बातें हमारे जीवन में सहज ही धारण होने लगती हैं, क्योंकि धारणा शक्ति बुद्धि है और मन इससे निरंतर जुड़ा हुआ है। मन अगर विचलित होगा, मन को अगर यहां वहां भटकने की आदत होगी, तो बुद्धि भी एकाग्र नहीं हो पाएगी। इसलिए 15 मिनट पहले योग में बैठकर हमें अपने मन को शांत कर लेना चाहिए, अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेना चाहिए। एक ये तैयारी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। बुद्धि जितनी एकाग्र हो जाएगी, मुरली की सूक्ष्म बातों को उतना ही कैच कर सकेंगे, क्योंकि मुरली लगातार पढ़ ही जाती है। अब कोई सुनाने वाला किसी इम्पोर्टेंट बात पर अटेंशन दिलाना जानता है, कोई नहीं जानता है। कोई लगातार पढ़ देते हैं, कितनी भी सुंदर बात हुई वो उसको पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, कईयों से वो मिस हो जाती है। इसलिए मुरली पढ़ने वालों को भी उन बातों पर विशेष अटेंशन दिलाना चाहिए जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो गुह्य रहस्य खुद में समाये हुए हैं, जो हमें ईश्वरीय नसों से भरपूर करने वाले हैं। तो तैयारी हम इस तरह करें, पहले हम योग करें, मन बुद्धि को स्थिर कर दें और फिर एक अभ्यास अवश्य रोज कर लिया करें। मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, स्वयं भगवान पढ़ाने आ रहे हैं, मैं कितना भाग्यवान हूं, मेरा जीवन कितना खिल गया है, भगवान के महावाक्य सुनकर स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आते हैं, इस नशे से अपने को अवश्य भरपूर करें। संसार में कोई यदि इस बात को सुन ले तो कैसा लगे, कोई विश्वास नहीं करे, पर सत्य तो यही है कि स्वयं भगवान अपना परमधाम छोड़कर हमें रोज पढ़ाने आते हैं। फिर हमें एक छोटा सा सुंदर अभ्यास किया करें, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूं। देखें अपने को भ्रकुटी सिंहासन पर बैठा हुआ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, ज्योति स्वरूप में मुझसे चारों तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। मैं स्वराज अधिकारी हूं, मन बुद्धि की मालिक हूं। ये रोज अपने को याद दिलाना है। फिर अपनी मन को, अपनी बुद्धि को आदेश देंगे, हे मेरे मन तू शांत हो जा, शांत। हे मेरी बुद्धि तू ग्रहण शक्ति है, तेरे पास धारणा शक्ति है, तू संपूर्ण पवित्र है, अब मुरली को संपूर्ण रूप से धारण करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास अमृत आने वाला है, तुम अब अमृत पान करोगी। इस अमृत पान को करके तुम्हें अतिंद्रिय सुखों का आभास होगा। अब बिल्कुल स्थिर हो जाओ, स्वच्छ सब कुछ ग्रहण कर लेना। इस तरह की तैयारी करके हम मुरली सुनेंगे। जब हम मुरली सुने तो सुनते हुए भी हमें कुछ सुंदर प्रैक्टिस अवश्य करनी है, और उन अभ्यासों में सर्वप्रथम अभ्यास है, भगवान मुझसे बातें कर रहा है, वो मुझे कुछ याद दिलाता है। देखिए, मुरली केवल ज्ञान नहीं, हमें स्मृति स्वरूप बनाने वाली है, हमारे मोह को नष्ट करने वाली है। सतयुग में हम क्या थे, उससे पहले हम कहाँ थे, पूरा चक्र हमने किस किस तरह व्यतीत किया, अब हम क्या हैं? मुरली हमें सब कुछ याद दिलाती है। तो मुरली सुनते हुए हमारी स्थिति मुरली मैं हो जाए, बिल्कुल मुरली और हम एक हो जाएं। भगवान मुझसे बात कर रहा है, वो मुझे कुछ कह रहा है, बस वो सुनते चलें, उस स्वरूप में साथ साथ स्वयं को स्थित करते चलें। ऐसा यदि हम करेंगे तो ये मुरली हमारे लिए सचमुच वरदान बन जाएगी। इतना रस भरेगा जीवन में, हमें लगेगा कि रोज सवेरे एक घंटा हम जैसे अमृत पान कराए, परम आनंद का अनुभव करके आ गए, अतिंद्रिय सुखों में झूम के आ गए। मुरली हमें झुमा देती है, यही वो मुरली है जिसके लिए गायन है। इस पर मन म्यूर नृत्य करने लगता है, गोप गोपियां इस पर डांस करने लगती हैं। मुरली की जब धुन बजती थी तो गोप गोपियां दूर दूर से भी भागी और खींची चली आती थी, वो हम सबका गायन है। तो मुरली की तान, मुरली की ध्वनि, मुरली के सुर ऐसे सुंदर हैं, जो मन म्योर नाच उठता है, ये अनुभूति हमें रोज करनी है। मुरली सुनने की और विधि भी, जिसको बहुत सुंदर हमें अनुभव में लाना है। पहली, मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर इन कानों से ईश्वरीय महावाक्य सुन रही हूं, इसमें स्वयं को स्थित कर दें। और पूरे पौना घंटे में, जितना भी समय आपका मुरली का चलता है, कम से कम 10 बार, बीच बीच में लगातार नहीं, 10 बार इसकी अनुभूति में आ जाएं। बिल्कुल अपने को आत्मा देख लें और मैं कानों द्वारा सुन रही हूं। इससे हमारी बुद्धि की ग्रहण शक्ति परफेक्ट हो जाएगी, जो कुछ सुना जाएगा साथ साथ धारण होता जाएगा। ये ईश्वरीय महावाक्य भी हैं। आत्मभिमानी होकर यदि मुरली सुने तो मुरली साथ साथ धारण हो जाती है, एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास, बहुत अच्छी तरह इसी तरह कम से कम 10 बार मुरली के समय में अभ्यास करेंगे, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं, मैं ज्ञान का देवता हूं, ज्ञान का अधिकारी हूं, और जैसे ऊपर से परम धाम से मेरे ऊपर किरणें पड़ रही हैं, पवित्र किरणें, कुछ कुछ देर मुरली में, ताकि मुरली भी मिस ना हो, बीच में 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड इस अभ्यास को कर लिया जाए। जब आप लिख रहे हैं तब छोड़ दें, लेकिन जब आप सुन रहे हैं, इस अनुभूति में निरंतर बैठकर भी मुरली का रसपान किया जा सकता है। और तीसरी विधि है, वो थोड़ी और सुंदर है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहती है, कि मुरली सुनते हुए हम अपनी बुद्धि को सूक्ष्म लोक में या परम धाम में स्थित कर दें, और जैसे बाबा से हम डायरेक्ट सुन रहे हैं, परम धाम में बाबा के स्वरूप को निहार भी रहे हैं और मुरली भी सुन रहे हैं, या सूक्ष्म लोक में हमारे सामने बाप दादा हैं और सामने बिल्कुल डायरेक्ट हम उसके महावाक्य सुन रहे हैं, लेकिन मुरली मिस न हो। मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों में ये डबल काम करने की बुद्धि है, उनकी बुद्धि इतनी सक्षम है कि वो ऊपर भी स्थिर रख सकते हैं बुद्धि को, और कानों से मुरली भी सुन सकते हैं। अन्यथा क्या होगा, अगर ऊपर बुद्धि स्थिर करेंगे मुरली मिस हो जाएगी। तो बीच में ऐसा समय देख लें जब मुरली रिपीट कराई जा रही हो या मुरली थोड़ी ठहरा दी गई हो, रुक गई हो, तो उस समय ये अभ्यास कर लें। इससे एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी और हमने देखा है कि इससे ये मुरली सचमुच बड़ी सुखदायिनी प्रतीत होती है। आप अगर ऐसे मुरली सुनेंगे तो आप कभी मुरली मिस नहीं कर सकेंगे। न केवल ये उस समय अमृत बन जाती है, न केवल वरदान बन जाती है, लेकिन सुखदायिनी बन जाती है। मैं हमेशा कहा है कि मेरा अनुभव ये है कि मुझे इस पूरे ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा सुख मिला है मुरली के समय, मुरली सुनने से, चाहे वो अव्यक्त मुरली हो चाहे साकार मुरलियां हो, क्योंकि मैं इसी अनुभूति में बैठकर मुरली सुनता हूं तो मुरली ऐसा लगता है कि एक घंटा बस हम भरपूर होकर आ गए, जैसे सारे दिन के लिए एनर्जी को जमा करके आ गए हैं। मुझे विश्वास है सभी इस तरह मुरली सुनेंगे। अब जब हमने मुरली सुन ली तो उसके बाद हमें सारा दिन उन श्रीमत का पालन करना होता है जो मुरली से हमें मिली है। सभी ने सुना होगा, बहुत सुंदर बाबा ने व्याख्या की। बाबा हमेशा कहते हैं बाप को साथ रखो, बाप के साथ का अनुभव करो। तो बहुत अच्छी बात कह दी, श्रीमत पर निरंतर चलना ही बाप के साथ रहना है। तो हम चेक कर लें कि जो जो बात बाबा ने हमें कही उसको हम पालन करते हैं और लक्ष्य बना लें। पुरुषार्थ का ये सर्वश्रेष्ठ तरीका हो जाएगा, बिल्कुल सरल तरीका हो जाएगा कि आज बाबा ने जो कहा मुझे आज ही उस पर ध्यान देना है। ये तो सत्य है कि एक दिन में तो कोई बात धारण नहीं होती, सब जानते हैं, लेकिन अगर हम लक्ष्य बना लें कि रोज की मुरली को हमें उसी दिन धारण कर लेना है, तो आज 5% धारण होगी, कल 10% धारण होगी, और इस तरह मुरली की धारणा जीवन में बढ़ती जाएगी। तो सवेरे से शाम तक जो भी श्रीमत हमें मिली हुई है, आंखों के लिए, कानों के लिए, मुख के लिए, सोचने के लिए, कर्म करने के लिए, अमृत वेले के लिए, मुरली कैसे सुने इसके लिए, कौन कौन से गुण धारण करें इसके लिए, व्यवहार में कैसे आए इसके लिए, समस्याएं आ जाएं क्या करें इसके लिए, माया का कोई प्रकोप हो जाए, कोई वार हो जाए तब हम क्या करें इसके लिए, और योग युक्त होने के बारे में अनेक मुरलियां, स्वमान में स्थित होने के लिए अनेक श्रीमत हम सबको प्राप्त हैं, उनका हम साथ साथ पालन करें। मान लो आज बाबा ने कह दिया कि तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है, तो हम सोच लें आज ही मुझे इस आज्ञा का पालन करना है। मुरली में बाबा ने कह दिया तुम्हारे मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय कुछ नहीं निकलना चाहिए, आज ही मुझे इसका पालन करना है। बाबा ने कह दिया हियर नो ईविल, सी नो ईविल, डू नो ईविल, आज ही मुझे इसका पालन करना है। बाबा ने कह दिया कि तुम्हें किसी पर क्रोध नहीं करना है, तुम्हें किसी से झगड़ना नहीं है, तुम्हें बहुत रॉयल बन के रहना है, आज ही मुझे इसका पालन करना है। बाबा ने कह दिया तुम्हें योग युक्त होकर भोजन खाना है, तुम्हें शांत में रहकर भोजन खाना है, तुम्हें ये ब्रह्मा भोजन खाना है, तो मुझे करना है, आज से ही मैं शुरू कर दूं। जैसा मैंने कहा एक दिन में कोई धारणा नहीं होती। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म बातें हैं, बाबा ने कहा ट्रस्टी बन कर रहो, बाबा ने कहा सब कुछ इंश्योर कर दो, उन्होंने कहा अपना सर्वस्व मुझ पर समर्पित कर दो, ये बड़ी धारणाएं हैं। गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो, ये बड़ी धारणाएं हैं, इनको हम अपनाते चलें, इन पर ध्यान दें। बहुतों के साथ क्या हो रहा है कि ये महावाक सुनते ही कई आत्माएं इनको रिजेक्ट कर देती हैं। जैसे मान लो बाबा ने कहा कि तुम्हें 8 घंटे रोज मुझे याद करना है, अनेक जो सभा में बैठे होंगे, अनेक मन ही मन में, अंतर मन में ही रिजेक्ट कर देंगे, अपने से ये काम नहीं होगा। तो ईश्वरीय बल से हम अपने को वंचित कर देते हैं। ऐसी कई धारणाएं हैं जिनके बारे में अनेक ब्रह्मा वत्स रिजेक्शन की फीलिंग रखते हैं। पहले से ही मान लिया है ये हमसे नहीं होगा, तो ये मान्यता ही गलत है। जो भगवान कह रहा है वो हमसे अवश्य होगा। आप भी जानते हैं, क्या आप अपने किसी बच्चे को वो काम करने को कहेंगे जो वो नहीं कर सकता? क्या आप अपने किसी बच्चे को वो वस्तु उठाने के लिए कहेंगे जो उससे नहीं उठ सकती? क्या आप अपने बच्चे को उस खाई को कूदने को कहेंगे जिसमें गिरकर वो मर जाए? तो भगवान जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, जो ज्ञान का सागर है, जो हमारी क्षमताओं को जानता है, क्या वो हमें वो काम देगा जो हम नहीं कर सकते? सभी सोच लो। तो याद रखना है, वो हमें वही श्रीमत दे रहा है जो हम कर सकते हैं, वो हमें वही कह रहा है जो हमारे लिए कल्याणकारी है, और इससे भी इम्पोर्टेंट, जो कुछ वो हमें कह रहा है अगर हम उसको करने की ठान लें तो वो साथ साथ हमें करने का बल भी दे देता है। तो इन सब बातों को जानते हुए इस मुरली को हम अपने जीवन के लिए वरदान बना दें। ये केवल महावाक्य नहीं, ये केवल सत्य ज्ञान नहीं, ये भगवान के परम सद्गुरु के वरदान भी हैं। हम इन वरदानों को अपने लिए स्वीकार कर लें। तो आओ हम सभी दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि हम रोज क्लास में जाकर मुरली का संपूर्ण सुख लेंगे, जल्दी उठेंगे, तैयारी करेंगे। हम दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें, ये काम हमें करना है, इसको प्राथमिकता दें। और काम भले ही हम छोड़ दें, ये काम हम नहीं छोड़ेंगे। क्या है कि लोग इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, महत्व तो नहीं दे रहे हैं। वो सोचते हैं चलो ये काम है ना, आज ये कर लेते हैं, मुरली तो बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन क्या इससे भगवान राजी होगा? कदापि नहीं। मुरली को महत्व दें, मुरली को प्रायोरिटी दें, इसको प्राथमिकता दे जीवन में, और सब कुछ हम मिस कर देंगे। पर भगवान के महावाक्यों का रसपान लेना हम मिस नहीं करेंगे, और सारा दिन भी उसको फॉलो करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें। वो सेकंड चीज है कि हम क्लास में नहीं जा सकते। स्टूडेंट हैं आप देर तक पढ़ते हैं, आपका बिजनेस है, आप देर से सोते हैं, आप मुरली में नहीं जा सकते। ये सेकंड बात है कि हम मुरली का अध्ययन कर लें, लेकिन उसमें भी हमें एक टाइम निश्चित करना चाहिए और पूरा पौना घंटा, एक घंटा अपने को देना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, 5 मिनट में मुरली पढ़ी, आगे की पीछे की पढ़ी और हो गया काम, चलो भाई अपने काम पर। इससे मुरली का रस जीवन में नहीं आएगा। अगर आपको घर में भी पढ़नी है, आप पौना घंटा अवश्य निकालें, 15 मिनट पहले बहुत अच्छी योग साधना करें, फिर आधा घंटा मुरली का बैठकर अध्ययन करें, हो सके तो मुख से बोल के पढ़ें, जैसे किसी को सुना रहे हों, मुख्य बातें नोट करें। ऐसा करने से सभी ईश्वरीय प्यार के अधिकारी बन जाएंगे, हमें बल मिलेगा जीवन में, माया को जीतने की शक्ति मिलेगी, और क्या क्या बाबा हमें कहते हैं वो हमें बार बार याद आएगा। अगर हम कुछ भूल भी गए तो वो रिवाइज होता रहेगा और हम बाबा के बहुत समीप पहुंच जाएंगे। यही हमारे इस ब्राह्मण जीवन की संपूर्ण सार्थकता होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है सभी ब्रह्मा वत्स मुरली पर रोज डांस करेंगे और अपने जीवन को एंजॉय करेंगे। मुझे बचपन से ही मुरली के प्रति अत्यधिक आकर्षण था। मुझे लगता था ये भगवान के महावाक्य, इनको तो चूम लिया जाए, इनको तो मस्तक पे रख दिया जाए, क्योंकि बचपन से ही गीता पढ़ने की बहुत आदत थी, श्रीमद् भगवत गीता से बहुत प्यार था। जब देखा भगवान सम्मुख बैठकर गीता ज्ञान दे रहे हैं, तो वही संपूर्ण प्यार बाबा की मुरलियों की तरफ टर्न हो गया। मुरली सुनने के लिए हम ऐसे भागते थे जैसे कभी मुरली सुनने के लिए गोप गोपियां भागा करते थे। मुझे याद आता था मुरली से बहुत पहले हम पहुंच जाएं, मुरली सुनाने वाली टीचर से पहले ही क्लास में पहुंच जाएं, ये संपूर्ण लक्ष्य रहता था। ये टीचर के प्रति हमारा सम्मान भी दर्शाता है। मैं ये सब अभ्यास किए जिनकी मैंने चर्चा की है, क्योंकि ये सब बातें बाबा की मुरलियों में ही आती हैं, वहीं से मैंने सीखा। मुझे लौकिक पढ़ाई से ये संस्कार था कि टीचर ने आज जो कुछ पढ़ाया है वो मुझे आज ही तैयार कर देना है। मैं कभी नहीं सोचता था कि एग्जाम से पहले तैयार कर लेंगे या बाद में घर जाके इसको तैयार करेंगे, साथ साथ तैयार कर लेना। वही संस्कार मुझे यहाँ काम आया। तो जब भगवान पढ़ा रहा है तो क्यों ना हम साथ साथ तैयार कर लें। तो मुरली का रस जीवन में बहुत बढ़ता गया और ऐसा होता था कि मुरली किसी भी तरह मिस करने का कोई संकल्प ही नहीं। हालांकि हमारी सेवा भोलेनाथ के भंडारे में आ गई थी, उन दिनों में कहीं स्पीकर भी लगे हुए नहीं होते थे। अगर हमारी मुरली मिस होती है तो वो सदा के लिए मुरली मिस होती है। ऐसा ही था बस। तो हम अपना कामकाज 6 बजे तक पूरा करके और बहुत जल्दी क्लास में पहुंच जाते थे, क्योंकि उन दिनों 6:15 बजे से ही मधुबन में मुरली प्रारंभ हो जाती थी। फिर 6:30 बजे से प्रारंभ होनी शुरू हुई, क्योंकि यहां सर्दी बहुत होती थी। तो देखा गया कि अगर कभी काम भी है तो मैं ये लक्ष्य रखता था कि चलो आधा घंटा 20 मिनट भी मुरली सुनकर अवश्य आनी है। और जब मैं मुरली सुनने बैठता था तो यही अभ्यास करता था कि ऊपर से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, जैसे एक फाउंटेन के नीचे मैं बैठा हूं और मुरली का रसपान कर रहा हूं। ये भगवान की अमृत वाणी मेरे कानों में पड़ रही है। उन दिनों तो बाबा के महावाक्य भी सुनाए जाते थे, टेप से सुनाए जाते थे। जब बाबा व्यक्त हुए, वीक में एक बार तो क्लास में टेप ही चलती थी, तो ऐसा लगता था भगवान ज्ञान की बरसात कर रहा है। उससे हमें अपने तन मन को, अपने सभी संस्कारों को, अपनी वृत्तियों को पूरी तरह भिगो देना है। छोटी आयु में भी मेरी बुद्धि इस तरह काम करती थी, तो मुरली सुनने में जाता था और भरपूर होकर आता था। दादी जान की कहा करती थी कि मुरली सुनने के तुरंत बाद नाश्ता ना करो, एकांत में जाओ और मुरली पे चिंतन करो। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और यहाँ आबू में चारों ओर एकांत ही एकांत। उन दिनों तो बहुत एकांत था, कोई विजिटर्स यहाँ आते नहीं थे, सड़कें सूनी पड़ी होती थी। मैं मुरली सुनने के बाद बाहर निकल जाता था और कभी कभी तो 1 घंटे में आता था। उसमें मैं योग का भी बहुत रस लेता था और मुरली का मनन भी बहुत अच्छा करता था। वो 1 घंटा भी मेरा बहुत स्वर्ण काल में कहूंगा होता था, 7:30 से 8:30 तक। उससे भी विचारों में बहुत महानता आ गई, क्योंकि मुरली के तुरंत बाद हमारा मन पूरा फ्रेश हो जाता है, हमारी बुद्धि भरपूर हो जाती है। तो हमारे मन में सुंदर विचार, महान विचारों का उदय होने लगता है, ये मैं देखता था। ऐसे सुंदर सुंदर विचार मन में आते थे जो मैं सोचता भी नहीं था, जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसका बहुत ज्यादा सुख जीवन में मिलने लगा। इस तरह सालों साल मैंने मुरली का बहुत रसपान किया और जो जो बाबा कहते थे, जैसे मैंने कहा, उसके बारे में मैं बहुत केयरफुल था। विशेष रूप से बाबा ने जब क्रोध पर मुरली चलाई, कई बार चलाई है और हम सब उन्हें सुन चुके हैं, तो मैंने लक्ष्य रख लिया मुझे अपने जीवन में क्रोध से मुक्त होना है। और पूरे 5 साल मैंने इसकी सूक्ष्मताओं पर ध्यान दिया, कहां मन में जरा भी उद्वेग उठता है, कहां जरा भी उत्तेजना होती है, कहां गुस्सा आता है। तो मैंने धीरे धीरे उस क्रोध के हर सूक्ष्म अंश को पकड़ लिया और उसको समाप्त किया, कुछ योग बल से, कुछ श्रेष्ठ संकल्पों के बल से, अर्थात ज्ञान के बल से। मैं आपको सुना दूं, जब बाबा की मुरलियों में सुना पर चिंतन पतन की जड़ है। कई बच्चे बहुत पर चिंतन करते हैं, एक ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं और तेरी मेरी करते रहते हैं। तो मैंने संकल्प किया कि मुझे इन सब बातों से मुक्त रहना है। जब भगवान को परचिंतन पसंद नहीं है तो मुझे क्यों पसंद हो, और भला परचिंतन से हमें मिलेगा भी क्या? न दूसरे बदलेंगे और न हमें कोई फायदा होगा, हमारा पतन होगा, दूसरों का भी पतन होगा। तो स्वचिंतन ही उन्नति की सीढ़ी है, ये बात समझ में आ गई। तो परचिंतन को समाप्त करने के लिए मैंने ड्रामा की कई बातें यूज की और ऐसे ही 3 साल तक इस पर भी बहुत ध्यान दिया। तो मुक्त हो गए, समय बच गया, व्यर्थ जो टाइम जाता था, संकल्पों की एनर्जी जाती थी, वो भी समाप्त हो गई। तीसरा, मेरा अनुभव बहुत अच्छा हुआ। साकार में जब बाबा थे तो मुरलियों में कई बार आता था, कई बच्चों में फीलिंग का फ्लू है, फीलिंग बहुत बड़ी बीमारी है। मैंने भी महसूस किया, किसी बात की यदि फीलिंग हमें आ जाती है तो सचमुच मन की खुशी नष्ट हो जाती है, निराशा से जीवन भर जाता है। उस स्थिति से उभरने के लिए हमें फिर काफी समय लगता है, हमारे मन में बहुत निगेटिविटी आ जाती है, जिसके कारण हमें फीलिंग हुई उसके बारे में हमारे दृष्टिकोण बदल जाते हैं। तो मैंने सोचा ये फीलिंग तो बहुत बुरी चीज है, बाबा की मुरलियों में आने लगा और उसका समाधान भी बाबा सुझाने लगे। जैसे बाबा ने कहा, फीलिंग प्रूफ होने के लिए तुम्हें ज्ञान का बल चाहिए। जो फीलिंग से परे हैं वही संपूर्ण है, बियॉन्ड फीलिंग, वही परफेक्ट होंगे। जो फुल होंगे उनको फीलिंग नहीं होगी। अगर तुम्हें बहुत फीलिंग आ रही है तो तुम फुल नहीं हो। फिर बाबा ने कहा, जिनके छोटे विचार होते हैं, जिनके हद के विचार होते हैं, जिनकी बुद्धि बेहद में नहीं रहती, वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, छोटी-छोटी बातों को बहुत फील करते हैं। तो मैंने भी निर्णय किया, मुझे अपने को फीलिंग से मुक्त कर देना है। कोई कुछ भी कह दे, कोई अवसर दे या न दे, कोई मान करे या न करे, कोई अपमान भी कर दे, कोई चीज मिले या न मिले, कोई गलत व्यवहार करे, कोई हमारे बारे में बुरा बोलता रहे, मुझे फीलिंग से मुक्त होना है। तो बाबा की मूल्यों के आधार से, देखिए मूल्यों से सब खजाना मिला, मूल्यों के आधार से बातें मिलती गई। मैंने देखा जिस चीज का मैंने पुरुषार्थ करना चाहा उस बात के बारे में बाबा के महावाक्यों से बहुत माल खजाना मिलता रहा, और इस तरह फीलिंग पर अभ्यास करते करते इस बीमारी से भी मुक्ति मिली। तो इस तरह मैंने प्योरिटी का बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, अव्यक्त मूल्यां चली, साकार मूल्यां चली, और मुझे लक्ष्य था कि मुझे अपनी पवित्रता को संपूर्ण बनाना ही है, ताकि पवित्रता मेरे लिए एक एंजॉयमेंट बन जाए, पवित्रता मेरे लिए एक स्ट्रगल न रहे, कि युद्ध न रहे, ऐसा न हो मुझे उससे युद्ध करने में अपने जीवन को व्यतीत करना पड़े। सेलिबेसी प्योरिटी एक बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ा आनंद है, इसकी अनुभूति होने लगी और मैंने इस पर काफी लंबा साल पुरुषार्थ किया, क्योंकि ये स्थिति 1-2 साल में नहीं आती, मैं कहूंगा कम से कम 20 साल मैंने इस पर बहुत अटेंशन दिया और संकल्प किया बाबा की मुरलियों से देह के आकर्षण से मुक्त होना है। जब बाबा ने ये कहा, ये देह तो जैसे सांप है, देह को देखना माना सर्प को देखना, तुम्हें तो आत्मा मणि को देखना है, ये मुरलियों में जब आज्ञा आई बाबा की तो मैंने इसको श्रीमत स्वीकार किया और सर्प को न देखकर मणि को देखने की धुन लगा दी। तो इस तरह ये मुरलियां हमारे जीवन के लिए वरदान बन गई। अनेक बातें हैं, मैंने तो सब कुछ मुरलियों से सीखा है, योगी बनना, बहुत ज्यादा ईश्वरीय नशे में रहना, अपनी बुद्धि को क्लीन रखना, व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त हो जाना, सबके लिए अपने मन को शुभ भावनाओं से भर देना, ये सब सुंदर बातें मुरलियों से मिली, श्रीमत के रूप में मिली। बस बात यही है, हमने उसके महत्व को समझा, जीवन में उसको महत्व दिया, एक एक बात हमारी स्पिरिचुअल लेवल को कितना ऊंचा उठाएगी इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। तो मुरली की हर बात पे ध्यान देने से वो बातें जीवन में आने लगी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा बाबा ऐसे ही कहता है, ये तो बाबा चलाता है। मैंने सोचा बाबा जो कुछ कहता है वो परम सत्य है, और जो कुछ कहता है उसको करने का बल भी तुरंत दे देता है, मुझे उसे अवश्य करना है। तो मैं सभी ब्रह्मावत्सों से, अपने भाई बहनों से कहूंगा, इस तरह मुरली को अपने जीवन में महत्व दें, उस पर इस तरह कार्य करें, तो आप देखेंगे हम बाबा के बहुत समीप पहुंच जाएंगे और इस जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी, हमारे संबंध भी मधुर बन जाएंगे और हम इस ब्राह्मण जीवन का आनंद लेंगे। ओम शांति।